ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पाइपलाइन के लीकेज से होने वाले पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि राज्य दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में और अपने हिस्से से भी ज्यादा पानी दे रहा है। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने राजधानी के गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज ग्रामीण विकास बोर्ड के साथ बैठक की। उत्तर रेलवे ने रेलवे के पुराने सामान को बेचकर 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अर्जित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पाइपलाइन के लीकेज से होने वाले पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इस बारे में आज राजस्व मंत्री आतिशी ने आदेश जारी कर मुख्य सचिव को इस पर अमल करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया कि ये अधिकारी पाइपलाइन को निगरानी करेंगे और पाइपलाइन के लीकेज मिलने पर 12 घंटे के अंदर उसे दुरुस्त करेंगे। आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों की भी एक टीम तैनात की जाएगी जो पानी के टैंकरों की व्यवस्था और इससे संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम के रूप में कार्य करेंगी। मंत्री आतिशी ने सभी टीमों द्वारा रोजाना शाम 5 बजे तक निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंपने के भी निर्देश दिए। राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कहीं पर भी पानी की लीकेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं करेगी। इस बीच भाजपा ने आज शहर में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वे शुरू से ही कहते रहे हैं कि दिल्ली में पानी की कमी आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पैदा की गई समस्या है।
दिल्ली जो एक एक बूंद को तरस रही है उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। जवाब देंगे आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना कि आप दिल्ली का जो प्यासा मार रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए आप लोगों ने अपने लोगों को इस काम पर लगा रखा है, जिसका आरोप हम बार बार लगा रहे हैं कि दिल्ली के विधायक पानी की चोरी करते हैं, पानी का व्यापार करते हैं। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते जल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनी हुई सरकारों को राजनीति करने के बजाय उनकी समस्याओं का निपटारा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता पानी की कमी से जूझ रही है। श्री देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और दिल्ली की सरकार को जल संकट को दूर करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि राज्य दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में और अपने हिस्से से भी ज्यादा पानी दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले भी पानी देने में कभी लापरवाही नहीं बरती है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दिए गए पानी का प्रबंधन और उपयोग दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। डॉ यादव ने कहा कि इस मामले में कोई अव्यवस्था न फैले इसके लिए शुरू से ही प्रयास किए गए हैं। हरियाणा से अधिक पानी मिलने के बाद भी अगर दिल्ली में पानी की कमी होती है तो उन्हें अपने प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पानी के आंतरिक वितरण में सुधार की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफियाओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ हिमाचल प्रदेश से अधिशेष पानी जारी रखने के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी के नुकसान के लिए की गई कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस मामले पर कल सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजधानी में पीने के पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सुझाए गए उपायों का पालन करना चाहिए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ, अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा के 264वें सत्र की शुरुआत भी इस महीने की 27 तारीख को शुरू होगी और आगामी संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश की जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने की चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है।
चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबका योगदान चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट में हर एक मेंबर का रोल है, रोल अलग अलग है, मकसद एक है, देश का सेवा। और पार्लियामेंट में अच्छा बहस हो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, ये देश का अपेक्षा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सब लोग मिलकर के योगदान करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री और राज्य मंत्रियों ने आज भी अपने कार्यभार संभाले। निर्मला सीतारामन ने आज केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। श्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर श्री गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। श्री अजय टम्टा और श्री हर्ष मल्होत्रा ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री का पदभार संभाला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने राजधानी के गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज ग्रामीण विकास बोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली नगर निगम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। श्री राय ने बताया कि दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले गांवों के विकास कार्यों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड ने 900 करोड़ रुपये की लागत के 1387 प्रस्ताव पास किए थे। उन्होंने बताया कि अब इन प्रस्तावों पर तेजी से कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी एजेंसियों को 15 जून तक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री राय ने कहा कि इन कार्य योजनाओं पर 19 जून को सभी विधायकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों में आ रही समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा योजनाओं से दस्तावेजों को पूरा करने के लिए सभी विभागों द्वारा 27 और 28 जून को सचिवालय में कैंप लगाए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबराय ने आज शहदरा क्षेत्र के पार्षदों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में गोकुलपुर स्थित नाले को ढकने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निगम के तहत आने वाले सभी पार्कों के रखरखाव के लिए बनाई गई योजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए भी कहा। इस बैठक में शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में एक वर्ष में दो बार प्रवेश देने के निर्णय पर जामिया मिलिया इस्लामिया ने कहा है कि विश्वविद्यालय की आगामी कार्यकारी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जामिया के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद शकील ने आज एक वक्तव्य में कहा है कि कार्यकारी परिषद के सदस्य निर्णय लेंगे कि द्विवार्षिक प्रवेश के प्रावधान को विश्वविद्यालय में किस प्रकार लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी के इस निर्णय को पीएचडी पाठ्यक्रमों में भी अकादमिक और कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के बाद लागू किया जा सकता है। प्रोफेसर शकील ने कहा कि यूजीसी के निर्णयों को लागू करने से पहले विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों से अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट 2024 परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद अक्सर पूछी जाने वाली प्रश्नावली जारी की है। इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए नीट परिणामों में कथित विसंगतियों के मद्देनजर ये प्रश्नावली जारी की गई है। परीक्षार्थियों को समय की हानि के लिए कृपांक देने में शिकायत निवारण समिति की भूमिका पर एजेंसी ने कहा है कि एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार किया। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि कृपांकों के कारण दो परीक्षार्थियों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में 1500 से अधिक परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे ने रेलवे के पुराने सामान को बेचकर 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अर्जित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने यह रिकॉर्ड चालू वित्त वर्ष में 11 जून तक स्क्रैप की बिक्री पर बनाया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने बताया कि यह बिक्री भारतीय रेल की सभी क्षेत्रीय रेल इकाइयों में सर्वाधिक है। श्री चौधरी ने कहा कि उत्तर रेलवे जीरो स्क्रैप का दर्जा हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर अपने परिसरों को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहा है। एंटी नारकोटिक्स दस्ते ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक तस्कर और दो ग्राहक को राजधानी के नजफगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स दस्ते ने आरोपियों के पास से प्रतिबंधित दवाइयों की 100 गोलियां और 8 इंजेक्शन जब्त किए हैं। एक गुप्त सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक्स दस्ते ने इन लोगों को पकड़ा है। मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जीनामणि ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है।
जो हीट वेव है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, इस जगह में प्रिवेल हो रहा है। उसी के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उत्तरी भाग है, वहाँ भी हीट वेव डेवलप हो चुका है। मानसून का अगर बात करें, मानसून भी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात में, और बारिश भी चालू है। लेकिन हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग आज और कल है कोंकण कोस्ट और केरला।
उधर राजधानी में तेज धूप के कारण लोगों को आज भी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहते हुए 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहते हुए 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और 25 से 35 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा भीषण गर्मी होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अमरीका से होगा।
ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। ये मैच न्यूयॉर्क में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीम अपने अपने दोनों मैच जीत चुकी हैं। भारत ने आयरलैंड और पाकिस्तान को और अमेरिका ने कनाडा और पाकिस्तान को हराया था। भारत ग्रुप में पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। आज ही एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नामीबिया से होगा। इससे पहले न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 107 रन का लक्ष्य 17 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इस बीच नेपाल और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाला ग्रुप डी का मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है। इससे श्रीलंका की सुपर 8 में पहुंचने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई हैं और नेपाल के क्वालिफाई करने पर भी खतरा मंडराने लगा है। दोनों टीम अब तक प्रतियोगिता में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका ने शीर्ष पर बने रहते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अंतिम ग्रुप मुकाबले में 17 जून को श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली 15 जून को उन सभी उम्मीदवार जिन्होंने JEE एडवांस 2024 परीक्षा पास कर ली है उनके लिए अपने दिल्ली और UAE के अबू धाबी परिसर में एक खुले सत्र का आयोजन करेगा। संस्थान ने कहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए उम्मीदवार अबू धाबी और दिल्ली परिसर में उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में जान पाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पाइपलाइन के लीकेज से होने वाले पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ADM और SDM स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा है कि राज्य दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में और अपने हिस्से से भी ज्यादा पानी दे रहा है। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने राजधानी के गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज ग्रामीण विकास बोर्ड के साथ बैठक की। उत्तर रेलवे ने रेलवे के पुराने सामान को बेचकर 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अर्जित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।